से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट शिफाली।
हेलो आकर्षिता एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर डियर लिसनर्स। आई होप यू आर ऑल एंजॉयिंग योर सैटरडे आफ्टरनून। एंड आकर्षिता, आज क्योंकि है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिमेम्बर दैट ह्यूमंस आर अ वेरी डाइवर्स ग्रुप,
राइट?
हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस एंड डाइवर्सेस, तो थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट तो होगा, बट क्योंकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है तो हमें याद रखना चाहिए दैट पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जहां इंसान है वहां डिसएग्रीमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट होंगे, बट रादर इट इज द एबिलिटी टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट बाय पीसफुल मीन्स।
सही कहा आपने शिफाली, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमें एक साथ कैसे आना है और बातचीत कैसे शुरू करनी है ये तो हम पर ही निर्भर करता है,
और साथ मिलके शांति से कैसे आगे बढ़ना है ये हम पे डिपेंड करता है। तो इसी के साथ लिसनर्स, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम परिक्रमा की। यू आर ट्यून्ड इन 200.1 FM एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस रिव्यूज एंड मच मोर, ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। एंड नाउ वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज Quad has emerged as a key group to work for peace, progress and prosperity in the Indo-Pacific region. To attend 6th summit of Quad leaders at Wilmington in Delaware, beginning past midnight, Indian Standard Time.
भारत और ब्राजील ने सतत विमानन ईंधन के उत्पादन और उपयोग में सहयोग करने तथा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर जोर दिया।
Campaigning gains momentum for second phase of assembly elections in Jammu and Kashmir. Senior BJP leader Amit Shah holds rally in Poonch.
मौसम विभाग ने उड़ीसा में कल से 3 दिनों तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया।
In Japan, thousands of people ordered to evacuate from Wajima and Suzu cities ahead of weather forecast warning. And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we'll talk about International Day of Peace and World Alzheimer's Day. So dear listeners, International Day of Peace is celebrated globally on September 21. Benjamin Franklin had said, there was never a good war or a bad peace.
हमारी सबसे बड़ी ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि शांति में है। जी हाँ, आज के समय की आवश्यकता शांति ही है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा आंतरिक और पड़ोसियों के साथ युद्ध के चपेट में है। युद्ध में तकनीक, घातक हथियारों, जैविक हथियार ने पूरी दुनिया को पहले से और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। कई जगहों पर शहर के शहर युद्ध से तबाह हो रहे हैं।
एवरी ईयर द यूनाइटेड नेशंस मार्क्स द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑन 21 सितंबर। This day was established in 1981 by the United Nations General Assembly, UNGA. A UN resolution declared it a day for commemorating and strengthening the ideals of peace both within and among all nations and peoples.
20 साल बाद UNGA ने दूसरा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आज के ही दिन को अहिंसा और युद्ध विराम का दिन घोषित किया गया, जिसमें संवाद, संघर्ष समाधान और शांति शिक्षा को बढ़ावा देते हुए शत्रुता को समाप्त करने की वकालत की गई। 2001 से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जा रहा है।
तो लिसनर्स, हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि हिस्ट्री क्या है इस दिन की, बट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, व्हाट इज पीस, व्हाट डू वी मीन बाय पीस? Peace is a simple word, yet filled with complexity and meaning. In dictionary, it is defined as freedom from disturbance, freedom from or the cessation of war or violence, mental or emotional calmness, among others.
सही कहा आपने शिफाली, शांति संघर्ष की कमी नहीं बल्कि स्वीकृति की शर्त है।
बिल्कुल,
शांति हमारे अपने जीवन में मायने रखती है, ये हमारे पड़ोसियों के लिए मायने रखती है और ये उन लाखों लोगों के लिए मायने रखती है जो इस धरती को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के सबसे समावेशी निकाय ने माना है कि शांति केवल संघर्ष की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि इसके लिए एक सकारात्मक गतिशील भागीदारी प्रक्रिया की भी आवश्यकता होती है, जहां संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है और संघर्षों को आपसी समझ और सहयोग की भावना से हल किया जाता है। और शिफाली
जी,
अगर हम यूं कहें कि ऐसी कोई भी समस्या होती ही नहीं जिसका हम बात से हल ना निकाल सकें, और ऐसी कोई भी समस्या जिसका हम बात से हल नहीं निकाल सकते उसकी भी उसका भी कुछ ना कुछ समाधान तो होता ही होगा।
आई बिलीव देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम एंड दैट सॉल्यूशन इज नेवर वायलेंस,
राइट?
सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू। सो पीस के काफी डेफिनेशंस हैं। अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज पीस फॉर यू, सो आई वुड से पीस इज फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस फ्रॉम पीयर्स पार्टनर्स फैमिली स्ट्रेंजर्स एंड द स्टेट। बेसिकली पीस इज फीलिंग सेफ।
जी हाँ, शांति हमें एक दूसरे से जोड़ती है। दुनिया भर के राष्ट्र और समुदाय गरीबी और बीमारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कहीं से भी आए हों या कोई भी भाषा बोलते हों, हम अलग होने की बजाय एक जैसे हैं।
बिल्कुल, एंड पीस इज नॉट वेरी इजी। इट विल रिक्वायर अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आवर सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस, बट पीस विल बी रेजिस्टेड, बट इट विल गेट देयर इवेंचुअली।
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का वैश्विक अनुपालन मतभेदों को सुलझाने में शांतिपूर्ण वार्ता और सहयोग की आवश्यकता की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है, क्योंकि हम शिफाली जानते हैं आज भी हम देख रहे हैं कई देश आपस में जो है युद्ध संघर्ष हो रहे हैं और किस तरीके से बातचीत से उनका हल भी निकल रहा है। जहां युद्ध जो है संघर्ष हो रहे हैं वहां युद्ध विराम भी हो रहा है बातचीत से, तो शांति इसमें कितनी ज्यादा बड़ी भूमिका निभाती है एक तरीके से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में भी। और दुनिया के कई हिस्सों में इस दिन एक मिनट का मौन रखा जाता है, शांति शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, अंतर सांस्कृतिक संवाद आयोजित किए जाते हैं और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जो संस्कृतियों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ाती हैं।
बिल्कुल, जैसा कि आकर्षिता आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे टॉक्स होते हैं, डेलीगेशन लेवल टॉक्स होते हैं एंड इंटर कम्युनिटी ऑल्सो, यू नो, फ्रॉम पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन, एवरीबडी इज एमिंग फॉर पीस समवेयर एंड इट डज make an impact too. And this year's theme is cultivating a culture of peace, stressing that the concept of peace must be nurtured around the world in different communities and generations.
जी हाँ, शांति यदि बलपूर्वक प्राप्त की जाए तो थोड़े समय से ज्यादा नहीं टिकती। सही कहा मैंने शिफाली?
Absolutely correct, आकर्षण,
है ना? और ये थीम बच्चों से शुरू करके समुदायों और राष्ट्रों तक शांति का निर्माण करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। ये इस विचार को दर्शाती है कि शांति प्रत्येक व्यक्ति के मन से शुरू होती है और इसे शिक्षा और रोजमर्रा की बातचीत के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और शिफाली, हम यूं कहें तो जितनी भी समस्याएं हैं, वो चाहे एक देश की समस्या हो या विश्व की समस्या हो या दो देशों के बीच की समस्या हो, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका बातचीत से हल ना निकल सके। और हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने भी ये बार बार कहा है कि आज का दौर युद्ध का नहीं है, आज का दौर शांति का है, तो हमें शांति पे ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हर मुद्दे का बातचीत से समाधान निकालना चाहिए और युद्ध से बचना चाहिए।
बिल्कुल आकर्षिता, और जहां शांति है वहीं प्रोग्रेस है, वहीं सक्सेस है, सो वी शुड ऑल फॉलो दैट। ऑल्सो डियर लिसनर्स, एवरी ईयर द डे इज लॉन्च्ड एट द यूएन हेडक्वार्टर्स बाय द पीस बेल सेरेमनी। The peace bell was cast in the early 1950s from coins and medals given by representatives of the UN member states and children from all continents. As UN Secretary General Antonio Guterres said in his address at the peace bell ceremony earlier in September, from the Middle East to Sudan, Ukraine and beyond, we see bullets and bombs maim and kill, bodies piled high, populations traumatized and buildings reduced to rubble. Meanwhile, the foundations of a peaceful world are fracturing. Geopolitical divisions are widening, inequalities are growing. So what we really need in today's day and age is peace.
जी हाँ, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गलत सूचना नफरत की आग को हवा दे रही है। और शिफाली, हम देख ही रहे हैं कि आजकल जो सूचना की क्रांति है, मतलब किस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है और चंद मिनटों में, चंद सेकंड्स में एक छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरे विश्व में फैल जा रही है।
बिल्कुल,
तो आप सोच सकते हैं कि एक नकारात्मक कोई मैसेज है, एक भ्रामक सूचना है, वो किस तरीके से इतनी कम जो है टाइम में फैल सकती है। इसलिए हमको एक तरीके से फिल्टर भी लगाना चाहिए।
बिल्कुल, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू यूज इट वाइजली।
हाँ, और इसीलिए जो है हमारे जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा था कि नई तकनीकों को बिना किसी सुरक्षा के हथियार बनाया जा रहा है और जलवायु संकट अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 के अनुसार भी गलत सूचना, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की घटनाएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और सशस्त्र संघर्ष दुनिया के सामने आने वाले शीर्ष जोखिमों में से एक है। तो अगर एक कहें तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक इन्फॉर्मेशन का भी एक बोल सकते हैं बहुत बड़ा एक वो आया है,
इट्स एन इन्फॉर्मेशन
आई है, इन्फॉर्मेशन की
एक्सप्लोजन ऑफ इन्फॉर्मेशन,
या राइट राइट, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं हम फिल्टर करके ही अगर अपने तक पहुंचने दें और सही सूचना को सही माध्यम और सही स्रोतों से ग्रहण करें तो हम इससे बच सकते हैं।
बिल्कुल, सो देयर इज सोशल मीडिया अराउंड अस, एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स, बट वी नीड टू यूज इट टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एंड मेक श्योर दैट वर्ल्ड बिकम्स अ पीसफुल प्लेस अगेन। And now, dear listeners, let's move over to our next topic of discussion for today, which is World Alzheimer's Day. It is also observed every year on September 21. It aims to raise awareness about the neurodegenerative disease. Alzheimer's is a type of dementia that affects memory, thinking and behavior.
जी हाँ, हर साल 21 सितंबर को डिमेंशिया और अल्जाइमर रोग से जुड़ी समस्याओं से मुकाबला करने और इन विकारों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ये अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों, उनके परिवार और देखभाल करने वाले द्वारा सामान की जाने, जैसे शिफाली मैं बीच में बोलना चाहूंगी इसमें कि हम जो अल्जाइमर डे मना रहे हैं ये सिर्फ उन जो रोगी हैं या जो इससे पीड़ित हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, लेकिन जो उनके उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके लिए भी कि उनको किस तरीके से मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये दिन उनके प्रयासों को भी चिन्हित करने का दिन है।
बिल्कुल,
और उनको भी महत्व देने का दिन है और उनको शुक्रिया कहने का भी दिन है। तो उनके परिवार और देखभाल करने वालों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के बारे में भी इस दिन हम जागरूकता फैलाते हैं। और कहीं पर इसमें जैसे डिमेंशिया में होता है, शिफाली हम अक्सर देखते हैं कहीं पे सामान रख के कहीं भूल जाना, अक्सर जो हमारे वृद्ध हैं या हमारे दादा नानी हैं, बाबा हैं, वो उनको ये बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो नाम पता और नंबर ना याद रखना, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो इंसानों को भी भूलने लगते हैं। तो ये बीमारी तो बहुत बड़ी है और इस बीमारी में जो भी लोग आसपास रहते हैं उस पीड़ित के, उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
Also, dear listeners, this year the theme is Time to Act on Dementia, Time to Act on Alzheimer's. Talking exclusively to Akashvani News, Head of Department of Neurology at AIIMS Delhi, Dr. Manjari Tripathi, highlighted major symptoms of Alzheimer's disease, including memory loss, difficulty in thinking, problems with reasoning, changes in behavior, and depression. Dr. Tripathi also told Akashvani News the key tasks and dietary changes one can do to deal with Alzheimer's disease.
अल्जाइमर्स वृद्धावस्था की बीमारी है, उसमें 55-60 इयर्स के बाद थोड़ा थोड़ा भूलना, जो हाल ही में हुआ है आज कल परसों में वो चीजें भूलना, पुरानी याददाश्त बची रहती है, इसके अलावा रास्ते भूलना, रास्तों में गुम जाना, उसके अलावा हिसाब किताब पढ़ना लिखना समझना, ये सब की परेशानियां आ सकती हैं। इसके साथ थोड़ा व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है और रोजमर्रा की जिंदगी में जो एक्टिविटीज हैं, जैसे अपनी जो अपीयरेंस है और अपनी देखभाल है, पर्सनल हाइजीन है, उससे भी असर पड़ता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं सारे धीरे धीरे आते हैं और अल्जाइमर्स के तीन स्टेज हैं, अर्ली, मिडिल एंड लेट। अर्ली स्टेज में सिर्फ याददाश्त या फिर रास्ते भूलने की तकलीफ हो सकती है और धीरे धीरे बाकी सारी चीजें आ सकती हैं। लास्ट स्टेज में कपड़ों में ही पेशाब करने लगते हैं, जिसके बारे में इनको समझ भी नहीं आता है कि कपड़ों में पेशाब हो गई है, और पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं दूसरों के ऊपर। अल्जाइमर्स की जो बीमारी है वो अगर हम अर्ली स्टेज में पकड़े तो बहुत सारे इंटरवेंशन मॉड्यूल्स हैं, जो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन मॉड्यूल्स हैं, एक्टिविटी इंटरवेंशन मॉड्यूल्स हैं, मेमोरी थेरेपी इंटरवेंशन मॉड्यूल्स हैं, जो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा दवाइयां जो मौजूद हैं वो अर्ली स्टेज में सबसे अच्छी तरीके से काम करती हैं और वो शुरू कर दी जा सकती हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अर्ली स्टेज में ही अल्जाइमर्स का डिटेक्शन करें। जैसे वृद्धावस्था में हल्की हल्की याददाश्त की तकलीफ आती है, बहुत जरूरी है कि ब्रेन को जो सपोर्ट करता है वो चीजें करें, जैसे ब्रेन की एक्सरसाइजेस करें, जैसे पजल, सुडोकू, पेंटिंग, कोई नई चीज सीखें, जैसे म्यूजिक थेरेपी, कोई नया लैंग्वेज सीखें, कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखें, या फिर हम कम्युनिटी सर्विस करें और फिजिकली एक्टिव रहें, वॉकिंग करें। इसके अलावा हम अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का ख्याल रखें, दोनों को नियंत्रण में रखें, मोटापा ना हो। और बहुत जरूरी है कि हम सोएं अच्छे से, 8 घंटे 7 घंटे की नींद, और अगर खराटे ले रहे हैं उसका इलाज करें, क्योंकि हाइपोक्सिया की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में होता है उससे भी याददाश्त खराब ज्यादा जल्दी होती है। इसके अलावा खान पान का बहुत ध्यान रखें। खाने में हम हरी चीजें हैं और स्प्राउट्स हैं और फ्रूट्स हैं और सीरियल्स हैं और लेंटल्स हैं और अच्छे तेल हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, थोड़ा बहुत घी, ये उपयोग करें। अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल ना करें। और ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा बहुत नेटवर्किंग, एनवायरमेंटल एनरिचमेंट अपने फ्रेंड्स के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए चलें।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
ऐसा कर्षदा, People with disabilities feel more powerful when they have the programs that give them employment possibilities and skill development. This encourages them to work towards their objectives and make a meaningful contribution to society. One such program, Divya Kala Mela, is organized in Vishakhapatnam to promote the talents and capabilities of Divyangjan. More from our correspondent.
The 19th edition of Divya Kala Mela was inaugurated in Vishakhapatnam by Governor of Andhra Pradesh S. Abdul Nazir along with Dr. Veerendra Kumar, Union Minister for Social Justice and Empowerment. Divya Kala Mela represents a significant step towards building an inclusive society that celebrates and empowers Divyangjan. This fair showcased vibrant products from 100 Divyanga artists across 20 states, including handcrafts, handlooms, embroidery, packaged foods, clothing, stationery, eco-friendly products, organic products, toys, gifts, personal accessories like jewelry, clutch bags, paintings, etc. While addressing the gathering, Minister Veerendra Kumar said that Divya Kala Melas were being organized across the country since December 2022. The main objective of the expo is to provide marketing support to the Divyangjans to prove their capabilities, apart from enabling them to earn a livelihood. This event promotes financial independence and inclusion for Divyang entrepreneurs through concessional loans of 40 lakh rupees to 10 Divyang beneficiaries under NDFDC schemes and distributed assistive devices with the support of CSR partners such as HPCL, GAIL India and IOCL. It aims to support the Vocal for Local initiative, allowing visitors to purchase unique items made with immense determination by Divyang artists and entrepreneurs. This is Satyanarayana for Parikrama from Vishakhapatnam.
And now time for Defence News Capsule from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defence. The report has been filed by Broadcasting Officer Anand Saurabh.
Promoting innovation and research and development is one of the focus areas of Ministry of Defence to achieve Atmanirbharta in defence and to make India self-reliant and also Viksit Bharat by 2047. In line with it, various organizations, including DRDO, are promoting innovations, and we have with us Mr. Parijat Vajpayee, a scientist who has devised a software-devised radio. Mr. Parijat Vajpayee, if you can tell us about your product and how it's going to benefit the armed forces and our goal to become self-reliant in defense.
We are working on software-defined radios, which will provide communication between all the three armed forces in a secured manner. Right now, we are demonstrating the MANPAC and the SDR MANPAC for Army and SDR MANPAC for Navy, the secure communication voice and data. And we are further working on the Air Force version of that form factor also. So DEAL is working on communications and data links. And right now, we are working on software-defined radios. So there are different form factors, MANPAC, handheld, airborne and shipborne versions. So to provide seamless communication between the armed forces secure with frequency hopping, so we are developing the waveforms Diehl has designed the hardware for this, and Bell has manufactured, so it is indigenous radio, and to provide communication between armed forces, secure communication. So these are the products from Defense Electronics Application Laboratory, Dehradun. To achieve self-reliance and in Atmanirbhar Bharat, DRDO has developed software-defined radios, and Bell has manufactured these radios to provide seamless connectivity between armed forces with secure communication. Between all the form factors, man-pack version, handheld version, ship-borne and airborne version. Previously, there were so many different type of radios which armed forces use. So, when SDR comes into the picture, same hardware can port different waveforms. If we buy the radio from some other vendor also, we can put our waveform into that radio, or we can put their waveform into our radio. So, in this way, inventory can be reduced.
For Parikrama, this is Anand Saurabh from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense.
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember the great Indian freedom fighter and former Chief Minister of Saurashtra in the present-day Gujarat, Uchang Rai Naval Shankar Dhebar. UN Dhebar was born on this day in 1905 in a hamlet near Jamnagar.
Under the influence of Mahatma Gandhi, Dhebar gave up his legal career to join the Indian independence movement in 1936 in his hometown, Rajkot. Dhebar led the satyagraha in the princely state of Rajkot between 1938 and 1942, and actively participated in the individual, satyagraha and confederation movement.
For his role in the Indian independence movement, he was imprisoned thrice by the British colonial government. Most of the princely rulers engaged in the policy of high taxation, imposing a heavy economic burden on the populace while ignoring the interest of the people.
The British provided them immunity from domestic and external aggression, and in return, the princely rulers used to support the British imperialistic policies, thereby acting against the development of nationalist sentiments. With nationalistic movement rising in India and many revolutionaries fleeing British authority and coming to the princely states in the first and second decades of the 20th century, pro-independence movement also gained ground in the princely states.
Dhebar emerged as one of the most prominent freedom movement leaders in the princely state of Rajkot.
Dhebar was instrumental in the creation of United Saurashtra in October 1947, when the Nawab of Junagadh tried to integrate the state of Junagadh into Pakistan. Dhebar led the movement from front and declared a total economic boycott, forcing the ruler of Junagadh to go underground.
Later, the boycott method was used by other smaller states, prompting intervention by the Indian government. Thus, with efforts led by Dhebar, freeing the powerful Junagadh state from the grip of its autocratic ruler, the path towards a much larger confederation of states became possible. Saurashtra, comprising of total of 202 princely and administrative states, was formed as a state in the Union of India on 15 February 1948, and Dhebar was appointed as state's first chief minister on the same day.
In 1973, he was awarded India's second highest civilian honor, the Padma Vibhushan Award. We salute the undying spirit of love and sacrifice of this great freedom fighter.
It was on this day in 1949 that the Maharaja of Manipur, Bodh Chandra Singh, signed merger agreement with the Union of India, and as a result of the agreement, the Manipur state merged into the Indian Union as a Part C state with effect from 15th October 1949.
Later, the state was given a substantial measure of local self-government under the Territorial Councils Act of 1956, a legislative body and Council of Ministers in 1963, and full statehood in 1972.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल शिफाली से।
जी आकर्षिता, इन क्रिकेट बांग्लादेश वर बैटिंग एट 158 रन्स एट द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन 37.2 ओवर्स एट द टाइम ऑफ स्टंप्स ऑन डे 3 एट द एम ए चिदम्बरम स्टेडियम इन चेन्नई। नजमुल हुसैन शांतो वर अनबीटन ऑन 51 रन्स एंड शाकिब अल हसन नॉट आउट ऑन 5 रन्स वर एट द क्रीज एट क्लोज ऑफ प्ले। रविचंद्रन अश्विन ट्रबल्ड द बैटर्स एंड बैग्ड 3 विकेट्स व्हाइल जसप्रीत बुमराह गॉट 1। द अंपायर्स हैव कॉल्ड द डे ऑफ आफ्टर डार्क क्लाउड्स एंड बैड लाइटिंग ट्रबल्ड द प्ले।
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है जयंती या फिर जन्मदिन या फिर पुण्यतिथि।
जी
तो आज आकाशवाणी के प्रसिद्ध समाचार वक्ता रामानुज प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि है। सन 1960 में आकाशवाणी से जुड़े रामानुज प्रसाद सिंह ने लंबी समय तक आकाशवाणी पर खबरें पढ़ने का कार्य किया। सुबह दोपहर और शाम के प्राइम बुलेटिनों में सालों तक समाचार पढ़ने के कारण रामानुज प्रसाद सिंह आम लोगों में एक जाना पहचाना नाम बन गए। और आज ही भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की पुण्यतिथि है। छोटे पर्दे पर आए हास्य कार्यक्रम लाफ्टर चैलेंज ने राजू श्रीवास्तव को घर घर में पहचान दिलाई। राजू श्रीवास्तव मुख्यतः आम आदमी और रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं पर व्यंग सुनाने के लिए जाने जाते थे। आइए सुनते हैं उनकी ये कॉमेडी।
कुत्तों के सामने मत नाचना, नहीं मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी, ये मेरे साथ बाबुल में है, बाबा में है, मैं नाचूंगी। गब्बर सिंह जुमा जुमा दे दे, गब्बर सिंह चले चले।
रामू की शोले में धर्म जी बोलेंगे,
बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, नहीं मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी, ये मेरे साथ बाबुल में है।
And dear listeners, today is the death anniversary of Walter Brennan, an American actor and singer. He won the Academy Award for Best Supporting Actor for his performances in Come and Get It, Kentucky and The Westerner. Other noteworthy performances were in To Have and Have Not, My Darling Clementine, Red River and Rio Bravo. Let's listen to a song from his movie Rio
Bravo. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy.
आज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, संगीतकार, भक्ति संगीत तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्वान जितेंद्र अभिषेकी की जयंती है। उन्हें मराठी थिएटर संगीत के उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाता है। जितेंद्र अभिषेकी ने खयाल गायन की एक विशिष्ट शैली विकसित की जिसे आज अभिषेकी घराने के नाम से जाना जाता है। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
उधली तरंग अबीर गुलाल, उधली तरंग अबीर गुलाल।
And dear listeners, today is the birth anniversary of Noor Jahan, also known as Malika-e-Tarannum, who was one of the greatest and most influential singers in the Indian subcontinent. Her major films include Badi Ma, Zenith, Gaon Ki Gori, Anmol Ghadi, Mirza Sahiba and Jugnu. Let's listen to a song from Anmol Ghadi.
आज बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर का जन्मदिन है। अपने अभिनय की शुरुआत साल 2000 में उन्होंने अपनी फिल्म रिफ्यूजी से की थी और इस फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार भी मिला। आइए सुनते हैं उनकी पहली फिल्म रिफ्यूजी से ये गीत।
साथ चले आए उम्र भर मेरे पास।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता और शिफाली को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।